शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार निराकार विद्महे, सत्यम शिवम सुंदरम शिवम सुंदरम। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, आधार तुम अवतार तुम झनकार तुम अंगार तुम, आधार तुम अवतार तुम झनकार तुम अंगार तुम, ओ योगी तुम महायोगी तुम, ओ आंधी में खामोशी तुम, नव सृष्टि के रचनाकार क्रांति वीर तुम, सखा वीर तुम महावीर तुम, शक्ति वीर तुम महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम, अनुशासन के महानायक तुम, सदा विजय वरदानी इतिहास की अमर कहानी, सदा विजय वरदानी इतिहास की अमर कहानी, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम ओ राजयोग के तपस्वी तुम, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी तुम, शिव शक्ति योगेश्वरी तुम, शिव शक्ति योगेश्वरी तुम, शिव शक्ति योगेश्वरी।
ओम शांति। एक व्यक्ति एक मनोचिकित्सक के पास पहुंचा और कहने लगा, एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मनोचिकित्सक ने कहा, क्या बीमारी है तुमको? उसने कहा, बीमारी मुझे नहीं है, मेरी पत्नी को है। मनोचिकित्सक ने पूछा, क्या है? उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी पत्नी को ऐसा लगता है कि वो मुर्गी है। दिन रात कुकुड़ को करती रहती है। क्या किया जाए? मनोचिकित्सक ने कहा, इसमें क्या है? उनको समझाओ, उसको बताओ। उसने कहा कि सारे उपाय करके हो गए, परंतु वो कुकुड़ को रात में भी बोलती रहती है। उसे पक्का निश्चय है कि वो मुर्गी ही है। मनोचिकित्सक ने कहा, उसको आईने के सामने बिठाओ, उसको दिखाओ कि तुम मनुष्य हो, तुम मुर्गी नहीं हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये थेरेपी काम करेगी। उस व्यक्ति ने कहा, थेरेपी तो बहुत अच्छी है, मैं कर भी लूंगा, और वो शायद मान भी जाए कि वो मुर्गी नहीं है, पर हमें अंडे भी तो चाहिए। बीमारी केवल एक तरफ नहीं है, दोनों तरफ है। ये मुरली और ऐसी कई मुरलियां हैं जिसमें एक बीमारी की चर्चा होती है, और ये एकमात्र बीमारी ऐसी है जिसकी तुलना बाबा ने कैंसर की बीमारी से की है। क्योंकि अभी तो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, पर सदियों से जो कैंसर के विषय में धारणा है कि लाइलाज है, अभी भी वो कैंसर जो एडवांस्ड है, जो सारे शरीर में फैल गया है, सामने सामने आ जाएंगे, उसका कोई भी इलाज नहीं। वैसे ही ये एक बीमारी ऐसी है कि जिसका कोई इलाज नहीं। कौन सी बीमारी? वहम की बीमारी, जिसमें पेशेंट को लगता है कि मुझे, व्यक्ति को लगता है कि ऐसा है और ऐसा ही है। उसे कितना भी समझाने की कोशिश करो, बताने की कोशिश करो, कितने भी काउंसलिंग सेशंस ले लो, कोई फायदा नहीं। बाबा ने कहा, यह बीमारी ऐसी है। कौन सी बीमारी? वहम की बीमारी। ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। स्वयं के विषय में, दूसरों के विषय में, मैं तो हूं ही ऐसा, दूसरों के विषय में ये तो है ऐसा, ऐसे ही रटते रहते हैं। बाहर से अच्छा दिखता है, बाहर से ऐसा नहीं लगता कि कोई बीमारी है, परंतु से जैसे कैंसर का पेशेंट अंदर से, ऊपर से बाबा ने कहा खाता पीता है, अंदर से शक्तिहीन, वैसे ही ये व्यक्ति भी ऊपर से सब ठीक है, दूसरों को भी ठीक देखना चाहता है, परंतु स्वयं सुख और संतोष से रहित है। ऐसी ये बीमारी है जो इतनी गहरे में चली गई है। फिक्स्ड ओपिनियंस, ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा है, ये वैसा है, क्या किया जाए इससे छूटने के लिए। संसार में भी कहते हैं वहम का कोई इलाज नहीं है, ऐसे कितने ही पेशेंट्स होते हैं, असंख्य पेशेंट्स जिनके असंख्य अलग अलग प्रकार की धारणाएं, मान्यताएं, अवधारणाएं होती है, और वही उनके इलाज में बाधा होती। मैं कभी ठीक ही नहीं हो सकता। कोई कोई है जिनको लगता है इस दुनिया की सभी बीमारियां मुझे हैं, और जब सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं बहुत पीड़ा होती है, दुख होता है। तीन बातें हैं इस मुरली में, ये क्या है? रहम, रहम, वहम और अहम। अहम अर्थात मैं, जो रहम दिल होते हैं वो किस में समाये हुए होते हैं? बाप में। उन्हें सब तरफ बाप दिखता है, और जो अहम वाले होते हैं उन्हें सब तरफ मैं ही दिखता है। वो वही जगह जाएंगे जहां मैं की तृप्ति होगी। ऐसे प्रोग्राम में कभी नहीं जाएंगे कि जहां मैं का आदर नहीं है, वहां पर मैं की प्रशस्ति, प्रशंसा होनी चाहिए, मैं को सम्मान मिलना चाहिए। मैंने किया, मैं हूं तो खुश होता है, नहीं तो बहुत दुख होता है। तो एक तरफ रहम दिल आत्मा, एक तरफ मैं वाली आत्मा, और एक तरफ वहम वाली आत्मा। बाबा ने कहा ये तीन बातें जो यहां होगी वहीं वो भक्ति मार्ग में चलेगी। तो इस मुरली में ऐसी ये 14 बातें हैं। पहले ये 14 देखेंगे कौन कौन सी है। इसलिए बाबा ने कहा तुम जो भी करते हो अटेंशन, क्योंकि तुम्हें कॉपी करने वाले पूरी दुनिया है। आदि, मध्य, अंत तुम आधार मूर्त हो, महाविनाश में महाकल्याणकारी हो, महादानी हो, वरदानी हो, महान पुण्य आत्मा हो। तुम ही भक्तों के मास्टर भगवान हो, और तुम ही सतयुग की प्रजा के प्रजापिता हो, त्रेता में भी। तो सबसे पहली बात, यहाँ क्या करते हो और वहां क्या बनता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, यहाँ तुम गीत गाते हो, या तो हम बाबा के गीत गाते हैं या तो बाबा हमारे गीत। संगम युग में जो हो रहा है, किन किन के बीच? हम और भगवान। कभी हम भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं, कभी वो हमारे लिए कुछ कर रहा है। इन इसका कंबाइंड भक्ति में यादगार बन रहा है। तो सबसे फर्स्ट गीत। दूसरा, हम यहां या भगवान हमारी कीर्ति, भक्ति में वो क्या बन जाता है? कीर्तन। तीसरा, यहां पर हम नाचते हैं, पर कैसे नाचते हैं? मन से, अतिंद्रिय सुख का नाच है, और वहां पर पाव का नाच है। चौथा, यहां पर हम जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनको गुणों की माला पहनाते हैं, या बाप हमें माला पहनाता है, या हम बाप को माला पहनाते हैं, तीनों ही। और वहां पर स्थूल माला, मनकों की माला। कितने की माला होती है? कितने? 108 की होते हैं। 108 ये फिगर जो है, इसका क्या महत्व है? इसके 21, इसकी 21 बातें निकालनी है कि 108 ही क्यों, भक्ति मार्ग में 108 का क्या क्या महत्व है, और इसकी चर्चा कल करेंगे, आज नहीं। तो आज आपको रिसर्च करना है, ढूंढना है 108 ही माला क्यों। एक तो 108 की माला होती है, और ढेर सारी चीजें हैं। उपनिषद कितने हैं, शास्त्र कितने हैं, इस तरह से बहुत सी बातें हैं 108 से संबंधित, देवता कितने हैं वगैरह वगैरह। तो 108 के कितने महत्व? 21 पॉइंट्स माला। फिर उसके बाद में तुम यहां बाप को भोग लगाते हो और वहां तुमको भोग लगाते हैं। उसके बाद में यहां तुम बाप को आगे रखते हो, वहां वो तुमको आगे रखेंगे। ये छठवा। सातवा, यहां यादगार याद स्वरूप हो तुम और उनका है यादगार स्वरूप। सातवा, एक बल एक भरोसा, ये तुम्हारा है। आठवा, उसी तरह भक्ति मार्ग में भी किसका उदाहरण दिया? हनुमान जी का। हनुमान किसका भक्त है? श्री राम के। हनुमान की भक्ति किस लिए की जाती है? ताकि श्री राम से मिलन मनाए। परंतु हनुमान की भक्ति में इतने डूब गए हैं कि राम भी आ जाए तो राम भी नहीं चाहिए। मतलब ज्यादा पक्ष शक्तिशाली है। संकट कटे मिटे सब पीर, जो सुमरे हनुमत बलबीर। तो एक बल एक भरोसा, ये भक्तों ने कहां से कॉपी किया है? यहां से। अगला, इसके बाद में यात्रा। तुम किस यात्रा पर हो? याद की यात्रा पर हो, रूहानी यात्रा पर हो। भक्तों ने कॉपी की है तुम्हारी, उन्होंने क्या कर दिया? यादगार यात्रा। उसके बाद में तुम यहां परिक्रमा करते हो। तुम ही नहीं करते, सबको कराते भी हो। और जब तक सारे चार धामों की परिक्रमा ना हो जाए, शांति नहीं मिलती तुमको, तब कहीं संतुष्टता होती है। भले एक एक सेकेंड ही क्यों ना रुके, हिस्ट्री ऑल फटाफट 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 हो गया, क्या देखा? कुछ नहीं। बाप तुम बाप टीचर सदगुरु, इधर एक बार बोला, दूसरी जगह कुछ और बोला। तुम यहां परिक्रमा करते हो, वो वहां परिक्रमा करते है। अगला, एक से सर्व प्राप्ति, या एक में निश्चय, पूर्ण निश्चय एक में ही। तुम में यदि यहां पर निश्चय कम है, यहां से ऊपर की जो 10 पॉइंट्स थी वो पॉजिटिव है, ये जो लास्ट चार है वो अलग प्रकार की पॉइंट्स है। अगर तुम में निश्चय कम है यहां और तुम एक रस नहीं हो, तो वो भी एक रस नहीं। कभी कृष्ण की भक्ति करेंगे, कभी हनुमान जी की, कभी राम जी की, कभी किसकी कभी किसकी। भक्ति में बिल्कुल भी अस्थिर है। जिसने जो मनोकामना पूरी कर दी उधर चल दिए। ये 11वां। 12वां, अगर तुम यहां शान से परे रहते हो, अर्थात समान से नीचे रहते हो, तुम्हारे भक्त उधर परेशान रहेंगे। अगला, तुम यहां कंप्लेन करते रहते हो, उल्हानों में रहते हो, तुम्हारे भक्त वहां कंप्लेंट करते रहेंगे। दिल शिकस्त की कंप्लेंट, चाहे प्यार की ही कंप्लेंट हो या अपनी कमियों की कमियों के उल्हाने। और लास्ट 14वां, तुम यदि तुम्हारे मन में यदि वहम है, वहम में भी कुछ कुछ कैटेगरीज है, जैसे रियल जोड़ियां किसकी होती है? केवल जूतों की, बाकी सब है मन का वहम। केवल जूतों की जोड़ियां ही मिलती है, बाकी कुछ भी सोचो कि तुम और मैं, हम और तुम, आई लव यू, यू लव मी, सब भ्रम, सब है मन का वहम। ये पॉजिटिव वहम जो कल्टीवेट करना है। तो वहम की बीमारी ऐसी है कि व्यक्ति को लगता है यह ऐसा ही है, कितना भी समझाओ कितना भी कुछ करो कुछ फायदा नहीं। और फिर है अहम, मैं मैं मैं। इस मैं को जब चोट लगती है, इस संसार में जितनी भी घटनाएं हुई है एक ही शब्द की वजह से हुई है, अपमान। सारा रामायण किसकी वजह से हुआ? अपमान। महाभारत किसकी वजह से हुआ? अपमान। नंद वंश का नाश किसकी वजह से हुआ? अपमान। इतिहास की जितनी घटनाएं हैं सबका मूल अपमान। हर चीज जो हुई है, फर्स्ट प्रथम साम्राज्य जो स्थापित हुआ चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को, क्यों हुआ? अपमान। तो अपमान अर्थात मैं को चोट लगती है। ये बड़ी ऊंची ऊंची बातें हैं जो इस मुरली में आई है। तो अभी हम 14 लोकेशंस में 14 पॉइंट्स डाल देंगे और उसको एक एक्टिविटी के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा सबसे पहला लोकेशन है शांति स्तंभ। एक बाजू में देखो भक्त और एक बाजू में देखो ज्ञानी। तो शांति स्तंभ के इस तरफ ब्राह्मण आत्माएं बैठ के क्या कर रही है? मन के गीत गा रही है। और दूसरी तरफ भक्त है, वो क्या कर रहे हैं? मुख से गा रहे हैं, मुख के गीत, मन के गीत और मुख के गीत। तो एक पिक्चर बनाना है मन में कि एक तरफ मुख के मन के गीत और दूसरी तरफ मुख के गीत। फिर आ जाओ हिस्ट्री हॉल में, उसके दो विभाजन करो। एक तरफ बाबा हमारी कीर्ति, हमारे श्रेष्ठ जीवन श्रेष्ठ कर्म की कीर्ति महिमा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भक्त क्या कर रहे हैं? खड़े रहकर कीर्तन कर रहे हैं। तो एक तरफ कीर्ति कीर्ति बहन और दूसरी तरफ कीर्तन। तो एक तरफ कीर्ति और दूसरी तरफ कीर्तन, एक तरफ गीत मन का और दूसरी तरफ मुख का। फिर आ जाओ बाबा का कमरा, और बाबा के कमरे में क्या कर रहे हैं? डांस। तो बाबा के कमरों को दो भागों में विभाजित करो। एक तरफ तो ज्ञानी बैठे हैं जो अतिंद्रिय सुख का डांस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भक्त जोर जोर से डांस कर रहे हैं, एग्रेसिव डांस। फिर उसके बाद आ जाओ कुटिया में, कुटिया में माला। तो बाप हमारे गुणों की माला का सिमरन कर रहे हैं, महिमा का सिमरन कर रहे हैं, और वहीं पर दूसरे भक्त बैठे हैं, वो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। याद रखना, हम पूछेंगे। डायरी बंद, किताब भी बंद। फिर आ जाओ यहां आंगन में, आंगन में मंजू बहन किधर है? भोग आज कमरे में नहीं लग रहा है, किधर भोग लगाया जा रहा है? आज मधुबन के आंगन में भोग लग रहा है। किसको भोग लग रहा है? हम लगा रहे भगवान को, और फिर भक्त है वो लगा रहे हमको। और वैसे भी आज गुरुवार है, तो सदगुरुवार का भोग आज कहाँ लग रहा है? आंगन में। भव्य आयोजन हुआ है आंगन में भोग का। तो जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं, वो एक बहन ने कहा था ना, भोग लगाते हुए नींद आती है, क्या करें? ये भी एक नए प्रकार की समस्या है ब्राह्मणों की। योग कराते हुए भी संडली पर बैठ के भी नींद आती है, और उससे भी बड़ी बात, तो एक भाई तो अमृत वेला ही गिर गए योग कराते कराते। एम्बुलेंस से सुबह 4 बजे हॉस्पिटल, हेड इंजुरी, भयंकर नींद। नींद थोड़ी ना देखती है तुम कहाँ बैठे हो, अच्छी बात है नींद तो बहुत गहरी समस्या है, उसका संबंध बहुत सारी चीजों से है। नींद कैसी हुई, कोई बीमारी तो नहीं है? रात में खाना क्या खाया, कितने बजे खाया, कैसे खाया, सोए कैसे, कितने बजे सोए, क्या करते हुए सोए, बहुत सारी बातें। कोई दवाइयां तो नहीं चल रही है? हुई कि नहीं हुई, हुई भी तो कितनी कैसी हुई, या थकान शरीर में बहुत ज़्यादा थी, और हो सकता है कोई बैठा है सो रहा है और हम सोचते हैं देखो ये सो रहा है, हो सकता है उसको बुखार हो फिर भी बैठा है, हमें किसी के विषय में कुछ भी पता नहीं होता है। हो सकता है कितनी उसके शरीर में बीमारियां हो या और कुछ हो, फिर भी आया है, पर हमें दूर से क्या दिखाई देता है? केवल बाहर का। इसलिए कई बार जो दिखाई देता है वो सत्य नहीं होता है, जो दिखता है वो भी सत्य नहीं होता है। राम रामायण का दृश्य है, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में चित्रकूट में कुटिया बनाकर है। लक्ष्मण जाकर देख के आता है कि भरत आ रहा है चतुरंगी सेना लेके, और अयोध्या का ध्वज भी दिखाई दे रहा है, रघुकुल का ध्वज दिखाई, भाग के आता है, कहता है कोई टाइम ही नहीं है, अभी फटाफट शस्त्र उठाओ, वो आ रहा है। अरे कौन आ रहा है? श्री राम कहते हैं कौन आ रहा है? वो आ रहा है, और वो अकेला नहीं आ रहा है, पूरी सेना लेके आ रहा है। हमें तो क्यों आ रहा है? बोलते हैं आप तो अपने आप इतने भोले हो कि दूसरों को भी ऐसा ही देखते हो, पर जैसी उसकी माँ कुटिल है वो भी वैसा ही कुटिल निकला। जरूर किसी ने समझाया होगा कि सारी प्रजा राम की तरफ है, अगर तुम राजा बन भी गए तो राम का खतरा हमेशा मंडराते रहेगा, क्यों ना जब वो अकेला है तो जाकर राम को ही खत्म कर दो। पर वो भरत ये भूल गया कि मैं यहां लक्ष्मण हूं, मैंने अपना धनुष ले लिया, उसको मार के रहूंगा। इतना बड़ा लंबा भाषण सुनाता है श्री राम को। लक्ष्मण कहता है जब इंद्र को भी पद का मद हो गया तो भरत क्या है? श्री राम क्या कहते हैं? पद का मोह इंद्र को हो सकता है, पर भरत तो इंद्र से भी ऊंचा है। और फिर दिखाए भरत आते हैं और फिर मैं शरण में आया हूं। लक्ष्मण को ऐसा बार बार कई बार पश्चाताप हुआ है कई बार आवेश जोश। और ये प्रश्न भी लक्ष्मण ने कभी श्री राम से पूछा है, जब शांत वातावरण होता है, जब कोई असुर द्वंद वगैरह नहीं कर रहा होता है, कि ऐसा मेरे साथ बार बार क्यों होता है? ऐसा नहीं कि लक्ष्मण को ये पता नहीं ये क्या हो रहा है, उसे पता है उसके एग्रेशन का, उसके उस स्वभाव का। वो पूछता भी है एक बार, इसका उत्तर आप ढूंढो, राम ने क्या उत्तर दिया था। तो कहां पहुंचे हम? भोग। भोग से हम लक्ष्मण के पास कैसे पहुंच गए? तो नींद। तो भोग, हाँ, जो है जैसा है वैसा, जो आंखों से भी दिखता है कई बार वो भी असत्य होता है। तो हम बाबा को भोग लगाते हैं, भक्त हमें भोग लगाते हैं। अगली पॉइंट, हम बाबा को आगे रखते हैं, पहले बाप फिर हम, वहां पर वो देवताओं को आगे रखते हैं और फिर खुद। जो भी चीज पहले हम बाबा को स्वीकार कराते हैं, ये भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। हमें जो भी मिलता है, कुछ भी कुछ भी, घर में जो भी वस्तुएं लाई जाती है, चाहे सब्जियां, चाहे सैलरी, पे स्लिप, एनीथिंग, कुछ भी, कोई भी वस्तु या कोई सौगात या कोई गिफ्ट, जो भी हमें मिलता है, प्रैक्टिस क्या करनी है? पहले पापा को, कार खरीदी, चाबी पहले ट्रांसलेट के सामने, आपकी कार आई है, बाकी आपकी अगर परमिशन है तो मैं यूज करूंगा अगर नहीं है तो किसी को दे देंगे बाकी आप तो मुझे ही दोगे, वो पता है, बट आप अगर बोलते हो, और वो बोलता तो है नहीं, पर जो भी करो, जैसे भक्ति में श्री कृष्णा अर्पणम मस्तु, हर चीज सब कुछ उसके लिए, वैसे ही हर चीज में, छोटी छोटी चीज में, पहले बाबा को रखना और फिर हम। तो ये कहाँ का यादगार? यही यादगार उधर भक्ति मार्ग में फिर कॉपी होगा, फॉलो होगा। उसके बाद में अगला, यहां तुम हो याद स्वरूप, वो है यादगार के स्मृति स्वरूप या यादगार स्वरूप। यहां जो कुछ भी तुम करते हो उसका यादगार उधर बनता है। तो यहां याद में रहते हो, वो यादगार स्वरूप में रहते हैं, अर्थात यादगार के स्मृति स्वरूप। अर्थात क्या? हम जिस जिस को याद करते हैं, उस याद करने की उस प्रक्रिया को भी वो याद करते हैं। वो इतनी चीजें कॉपी करते हैं कि हमने जो कुछ भी किया उस करने की क्रिया में को भी वो कॉपी करते हैं। हमारा हर कर्म उधर कर्मकांड बनता है। हमने स्वयं को अर्पित किया, वहां पर वो यज्ञ में चीजों को अर्पित करते हैं, बलि देते हैं। हमने मैं को अर्पित किया, तो वो सारी बातें। तो उसके बाद में अगला, आठवां, एक बल एक भरोसा। जैसे ये हमारा है यहाँ, वहां पर भक्तों का भी होता है। हनुमान जी के भक्त है तो केवल हनुमान ही चाहिए, राम भी नहीं चाहिए उनको, जबकि राम हनुमान के बॉस है। फिर भी भूत पिशाच निकट नहीं आवे, उसके लिए हनुमान जी, हर चीज के लिए हनुमान जी। तो ऐसे भी बहुत कट्टर भक्त होते, बहुत दृढ़ भक्त, उनको और कोई भी नहीं चाहिए, वही चाहिए। तो ये कहाँ का यादगार है? तुम्हारा यहाँ का जो स्लोगन है, एक बाप दूसरा न कोई। अगला, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। तो ये कहाँ था हमारा पॉइंट? ये वाला पॉइंट था हमारा ओम शांति भवन ऊपर। उसमें एक तो याद स्वरूप में हम बैठे और भक्त यादगार रूप, बाजू का जो कमरा है उसमें एक बल एक भरोसा, एक ही बाप योग में बैठे हैं और एक ही संकल्प, एक बल एक भरोसा। फिर बाजू में लाइब्रेरी, सोचो लाइब्रेरी क्या है? बुकिंग ऑफिस है। वहां पर किसकी बुकिंग हो रही है? यात्रा की। हमारी है याद की यात्रा है, और उनकी है यादगार यात्रा। यादगार की यात्रा। उसके बाद में मेडिटेशन हॉल में चारों स्तंभ ऊपर ही बने हुए हैं। चारों क्या, चारों स्तंभ या तो चारों धाम, हिस्ट्री हॉल भी मेडिटेशन हॉल में, और हम लोग क्या कर रहे हैं वहां पर, परिक्रमा कर रहे हैं। तो भक्तों ने चार धाम की परिक्रमा चालू कर दी है, एक भी धाम छूटना नहीं चाहिए, तभी उनको तृप्ति होती है। उसके बाद में एक में अटल निश्चय, डिस्पेंसरी, एक ही डॉक्टर, दूसरा ना कोई। नहीं तो भक्ति मार में कभी कृष्ण के भक्त बनते हैं तो कभी राम के भक्त बनते हैं, स्थिर नहीं रह पाते, एक रस अचल अवस्था नहीं रहती है। आज इसके पास जाएंगे, कल उसके पास जाएंगे, पता चला वहां पर कुछ ज्यादा प्राप्ति हो रही है, यहाँ तो इतने दिनों से बाबा ने कभी बीमारी ठीक नहीं की और उनके पास गए तो तुरंत बीमारी ठीक हो गई। अब बताओ शक्तिशाली बाप है या वो, कितने दिन से बाबा से कह रहे बाबा पति की दारू छुड़ाओ, अब तक नहीं छुड़ाई, उनके पास गए तुरंत छुड़ा दी, तो डोलने लग। ज्ञान की समझ गहरी नहीं है, उथली उथली समझ है, इसलिए भटकते हैं इधर से उधर। तो यहाँ पर एक से ही सर्व प्राप्ति और एक में ही अटल निश्चय। उसके बाद में ऊपर डाइनिंग में शान से परे, जब रहेंगे तब परेशान, नीचे भंडारे में कंप्लेंट ही कर रहे, कमजोरियों की कंप्लेंट करते रहते हैं अपनी, या उल्हाने या फिर दिल शिकस्त होते हैं और फिर कंप्लेंट करते रहते, हर एक व्यक्ति के बारे में कंप्लेंट है, सीनियर्स के बारे में कंप्लेंट है, अपने साथियों के बारे में कंप्लेंट है, अपने छोटों के बारे में कंप्लेंट है, अपने काम के बारे में, ड्यूटी के बारे में, समय के बारे में कंप्लेंट है, हर चीज के बारे में कंप्लेंट से भरे हुए, कंप्लेंट बॉक्स, कंप्लेंट बॉक्स है व्यक्ति, करना कुछ नहीं है बस कंप्लेंट ही करते रहते हैं और निगेटिविटी फैलाते रहते हैं, दूसरों को भी कमजोर करते हैं, ये मुख्य काम है। तो उल्हाने, और लास्ट में 14वां हॉस्पिटल, ये तो बताया ही है, अहम वहम रहम, ना इलाज, कुछ ला इलाज बीमारी है। तो आज दो तीन काम करने हैं, सबसे पहला तो टाइम हो गया वैसे, तो एक चिट पेपर दे दो सबको, गुणों की माला, तो आपके बाजू में जो बैठा है एक बार उसको देख लो और उसका एक गुण लिख लो उसके ऊपर, जल्दी जल्दी, जो नीचे बैठे है वही कर लो बस, ऊपर का ऊपर वाले छोड़ दो, नीचे वालों को दे दो बस। ये एक्टिविटी में आपको आपके बाजू में जो है उसका एक गुण लिखना है, और उसके बाद में अगर उसको जानते नहीं तो भी इतना तो जानते हो कि ब्राह्मण आत्मा है, और फिर वो एक्सचेंज करना है, उसने क्या लिखा हमारे विषय में वो पढ़ना है, लिख के जिसके विषय में लिखा उसको दे दो। कौन वो है, दो तीन दिन है, कल है ना, बस एक्सचेंज कर लो, एक ही शब्द लिखना है बस, ओनली वन वर्ड, सेंटेंस भी नहीं, वर्ड बस, एक गुण एक्सचेंज करके उसको एक बार पढ़ो। एक्टिविटी दूसरी, ये जो दूसरी एक्टिविटी है उसमें बाबा ने भक्ति का उदाहरण दिया है, तो भक्ति में कौन कौन से उदाहरण है भक्त और भगवान के, मीरा और कृष्ण, राधे और कृष्ण, गोपी और कृष्ण, प्रहलाद और विष्णु, ध्रुव और विष्णु, नारद और विष्णु, और राम और हनुमान, और राम और अर्जुन और कृष्ण, शबरी और श्री राम, तो ये सारे सारे उदाहरण हैं, प्रहलाद, सती और शिव, तो ये सारे उदाहरण हैं। तो इसकी एक, अभी तो टाइम कम है, बट इसकी एक एक्टिविटी बनाई जा सकती है कि इन दोनों का क्या संवाद होगा, जैसे शबरी और श्री राम, जैसे आप अगर शबरी है और ये श्री राम है तो क्या बात करोगे, ये शबरी और ये राम, ये कृष्ण और ये अर्जुन, ठीक। एक्टिविटी, तो ये भी एक एक्टिविटी हो सकती है। तो आज ये काम बताया, सबसे पहला काम तो 108 का क्या महत्व है, उसकी कितनी बातें लिखनी है, 21 बातें, वो थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा 108 क्या क्या है संसार में, ठीक है, ग्रह नक्षत्र बहुत सारी चीजें आती है इसमें, शास्त्र उपनिषद बहुत सारी चीजें है, तो वो सारी बातें इसमें लिखनी है, ये पहला काम। दूसरा काम आज की मुरली से, दूसरा काम है एक विजन बोर्ड बनाना है, विजन बोर्ड अर्थात एक टॉपिक आपको दे रहे हैं, एक बाप दूसरा ना कोई। इसमें किस तरह का चित्र बनाया जा सकता, इट कुड बी पिक्चर, अ कोलैज, एनीथिंग, कोई भी एक चित्र इसका बनाना है, एक बाप दूसरा ना कोई का क्या बनाना है, विजन बोर्ड। विजन बोर्ड वो होता है कि जो जैसे बच्चे होते हैं ना स्कूल में पढ़ते हैं तो अपने आंखों के सामने रखते हैं वो विजन बोर्ड कि मुझे टॉपर आना, आई एम टॉपर, आई एम टॉपर, आई एम टॉपर, याद रखते हैं। एग्जाम की डेट है 15 तारीख नवंबर मास, ये डेट है और मुझे इस एग्जाम में टॉप करना है, तो विजन रखते हैं सामने। उसी तरह ये विजन बोर्ड, एक बाप दूसरा ना कोई, या फिर एक बल एक भरोसा, ये भी ले सकते हैं जो मुरली में है। एक बल एक भरोसा का क्या बनाना है, एक विजन बोर्ड बनाना है। उसके बाद में भक्ति और ज्ञान, इनमें क्या क्या अंतर है, इसका एक चार्ट बनाना है। ये भक्ति मार्ग में, ये ज्ञान मार्ग में, ये भक्ति ये छोड़कर, ये तो 14 पॉइंट्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे। कौन कौन से 14 है ये, सबसे पहले बताया हमने गीत, दूसरा बताया हिस्ट्री हॉल में कीर्तन, कीर्ति कीर्तन, उसके बाद में फिर डांस कर रहे हैं बाबा के कमरे में, उसके बाद में माला, उसके बाद में आंगन में भोग, उसके बाद में ऊपर ओम शांति भवन में, इधर सबसे पहले बाबा को रखते, यहाँ जो बैठा है ना उसको आगे नहीं रखना है क्योंकि यहाँ वाले बदलते रहते हैं, है ना, कोई आज बोलेगा कोई कल बोलेगा, उसको नहीं देखना है, बाप को देखना है, ठीक है। तो बाप पहले, हम बाद में, उसके बाद में ऊपर यादगार, याद स्वरूप और यादगार स्वरूप, फिर बाजू में एक बाप दूसरा ना कोई, फिर बाद में बुकिंग ऑफिस, एक यात्रा उधर बुक करते हैं, एक है कौन सी यात्रा, यादगार की यात्रा, एक रूहानी यात्रा जो हमारी है, उसके बाद में चारों ही धाम एक साथ परिक्रमा, तो यहाँ पर हम कहते हैं परिक्रमा करनी है और दूसरों को भी कराते हैं, वैसे भक्ति मार्ग में इसी का यादगार है चार धाम। कौन से चार धाम है, बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका और रामेश्वरम, ये चार है मुख्य, ये चार ही है। उसके बाद में अगला हिज मेडिटेशन डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी मतलब एक ही डॉक्टर बस, एक बल एक भरोसा, यहाँ एक बल एक भरोसा नहीं है, यहाँ का एक से सर्व प्राप्ति, एक में निश्चय बुद्धि, इसी का यादगार भक्ति मार्ग में केवल एक ही बस और कोई भी नहीं। तुम अपनी स्थिति को एक रस बनाओ, स्थिर फ्लक्चुएटिंग मूड नहीं चाहिए, जो सुबह मूड है अमृत वेला वही दोपहर को, वही शाम को, वही रात, बदलते नहीं रहना चाहिए परिस्थितियों के साथ, परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, हमारा मूड एक मूड, हैप्पी मूड, होली मूड, लाइट मूड, एक प्रश्न था। उसके बाद में अगला ऊपर, शान से परे हम होते हैं तो सारी दुनिया परेशान, क्योंकि हम अपने शान में ही नहीं है, फिर जब हम उलाने देते रहेंगे तो वो भी उलाने देंगे, और हॉस्पिटल लास्ट क्या बनना है, रहम दिल। तो आज का अगला काम है कंपैशन चैलेंज, सारे दिन भर में जहां जहां हम कंपैशन नहीं दिखाते, रहम नहीं दिखाते, वहां पर रहम दिखा के देखना है कि इस परिस्थिति में अगर रहम दिखाया तो क्या होता है, इस परिस्थिति में अगर रहम दिखाया तो वही परिस्थिति, क्योंकि लोग गलतियां करेंगे, जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उनको कितना भी समझाओ, कुछ भी करो, सब कुछ करो, फिर भी वो करते ही है गड़बड़, कितना भी समझाओ, यहां से जाएंगे फिर दारू चालू करेंगे, फिर वादे करेंगे, बड़े बड़े लिख के देंगे कि आज से नहीं लूंगा, ये नहीं करूंगा, और 10 दिन के बाद वापस आधी रात को फिर से एडमिट हो जाते, और हर बार वही कहेंगे अगली बार से नहीं करेंगे, तो क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। रहम दिल, तो रहम से क्या क्या होता है, तो रहम का चैलेंज, तो आज कितने काम दिए हैं, पहला बताया 108, दूसरा बताया विजन, विजन एक बनाना है, विजन बोर्ड बनाना है जिसमें एक बल एक भरोसा, ये ले लो जो मुरली में है, इसका क्या चित्र बना सकते हैं आप। तीसरा भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में क्या अंतर है, ये 14 छोड़कर। उसके बाद में अगला बताया कंपैशन चैलेंज, इसको चैलेंज के रूप में लेना है क्योंकि ये कठिन काम है कई बार, क्योंकि आत्माओं को कितना भी कुछ करो वो गलतियां करते हैं, सब कुछ करते हैं, गड़बड़ करते हैं, कुछ भी करेंगे, तो हमें रहम दिल बनना है। एक लास्ट चीज जो बताया भक्ति में जो दो 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 है, तो सती और पार्वती, अगर ये दो किसी को दिया जाए क्या बात करेंगे, सती और शंकर या शिव, सती शिव से क्या कहेगी, सती कहो पार्वती कहो, एक ही है। क्या कहेगी? जहां प्रेम होता है वहां की भाषा मुख होती है। तो ऐसे संवाद अपने मन में बनाने हैं, लिखने हैं। अर्जुन और कृष्ण के क्या संवाद होंगे, ध्रुव और विष्णु के क्या संवाद होंगे, प्रह्लाद और विष्णु के क्या, नरसिंह अवतार के क्या संवाद होंगे। ये होमवर्क नहीं है परंतु चिंतन। हाँ वो तो बताया था एक बार। तो ये थी आज की मुरली। तो मुरली को क्या करना है, टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित करना है। एक पूरा पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं आता है। तो उसको क्या कर दिया हमने, 14 भागों में। और एक लास्ट पॉइंट है मुरली की, समान। तुम कौन हो? तुम हो मास्टर भगवान, तुम हो प्रजापति पिता, तुम ये हो, तुम वो हो। कितने सारे समान आए हैं लास्ट में, आदि मध्य अंत के आधार मूल तुम हो, रहम दिल तुम हो, महादानी तुम हो, वरदानी तुम हो, महान कल्याणकारी तुम हो विनाश काल में, और पांचवा महान पुण्य आत्मा तुम हो। इसलिए ये सारी मुरली का सार अपने ऊपर कितना तुमको अटेंशन रखना चाहिए, क्योंकि तुम जो कुछ करते हो वो दुनिया कॉपी करेगी। कुछ भी करो, तुम गड़बड़ करोगे तो दुनिया गड़बड़ करेगी। कुछ भी करो, अब ये स्थिति आ गई है, जैसे एक भैंस जंगल में खो गई तो उसने ऐसी भागते भागते रास्ता एक बना दिया और निकल गई, फिर गांव आ गया। तो जो लोग नए आए उन्होंने देखा ये रास्ता तो ऑलरेडी बना है, बराबर उसको फॉलो किया, इधर 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 कभी इधर कभी इधर, करते करते वो हाईवे बन गया फिर बाद में, बट वो मार्ग इतना सही था, बट लोगों ने फॉलो किसको किया कहीं इधर ही उधर घूम रहे हो, 5 मिनट का रास्ता था पर वो 1 घंटे का, क्योंकि फॉलो उसी को किया है कि भैंस जहां से गई, अब किसको पता नहीं कौन गया, बट एक ने फॉलो किया तो सब ने फॉलो किया और बाद में नेशनल हाईवे बना वो तो अपना मार्ग खुद, या तो कल बाबा ने कहा था मार्ग बना हुआ है, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, ब्रह्मा ने बना रखा है। ओम शांति।
Don't प्रकृति जी हो, तपस्या की धुन में रमी बाबा की आश हो, बाबा की आश हो।
श्वासों में प्राण हो, व्यक्ति एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंख नाद हो।
तुम महावीर हो, वज्र के समान हो, कोई ना भी सके ऐसी चट्टान हो।
तुम क्रांति वीर हो, तुम कर्म वीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो।